संजीवनी बात सेहत की।
श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर आपकी बात एक्सपर्ट से कराते हैं और इसी श्रृंखला में आज हमने जो विषय सेलेक्ट किया है वो कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में बहुत सी भ्रांतियां भी फैलती हैं और एक डर सा भी उत्पन्न होता है। आज का जो विषय हम लेंगे वो महिलाओं में जो होते हैं कैंसर उसके बारे में और पर्टिकुलरली थायराइड कैंसर के बारे में बातचीत करेंगे। कैंसर बहुत तरीके के होते हैं और कई जगहों पर हो सकते हैं, उनमें मैलिग्नेंसी किस तरीके से फैलती है और क्या फैक्टर हो सकते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए और एक बार ठीक होने के बाद किस तरीके से हमको अपनी लाइफस्टाइल रेगुलेट करनी है, इन सभी बातों पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सीनियर हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर तपस्विनी प्रधान।
नमस्कार।
डॉक्टर तपस्विनी प्रधान हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इस क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैंसर है वो कौन से कैंसर बहुत कॉमन होते हैं?
देखिए, ऐसा है, महिलाओं में सबसे कॉमन विश्व भर में जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। भारत में अगर हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ऊपर आता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर और फिर जो हेड एंड नेक कैंसर वो चौथे स्थान पर आता है। और अधिकतर जो हम देखते हैं हेड एंड नेक एरिया में वो मुंह का कैंसर होता है। पर थायराइड जो विषय आज हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत कॉमन है जो हम महिलाओं में अधिकतर देखते हैं।
महिलाओं और पुरुष में
जी
क्या अंतर हो सकता है थायराइड कैंसर में, किसमें ऑकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और कितने?
थायराइड कैंसर जो है अधिकतर महिलाओं में ही देखा जाता है। अगर आप देखेंगे महिलाओं में थायराइड की दिक्कतें जो है ज्यादा होते हैं। क्यों, क्या कारण है एग्जैक्टली थायराइड कैंसर महिलाओं में ज्यादा होना, इसका साइंटिफिक एविडेंस अभी है नहीं, बट लगता है बहुत से दिक्कतों फिजियोलॉजिकल होती हैं फीमेल शरीर में जिसके कारण थायराइड ग्लैंड में कई परिवर्तन आते हैं। और जब लॉन्ग स्टैंडिंग चेंजेस होते हैं 20% लोगों में ये कैंसर का रूप ले लेता है। पर थायराइड कैंसर के कई अन्य कारण भी हैं जिसके कारण ये टिश्यू जो है कैंसर का रूप ले लेता है।
डॉक्टर तपस्विनी, बहुत बार ये चीज हम देखते हैं, महिलाएं थायराइड ग्लैंड से संबंधित समस्याओं के बारे में बात भी करती हैं और डॉक्टर उनको अपना थायराइड चेक करने के लिए भी बोलते हैं और दवाइयां वगैरह भी चलती हैं। आयोडीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी कमी से भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये थायराइड कैंसर जो है महिलाओं में होता है और इसके शुरू में पकड़ लेने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि हम ये एक नोशन बना सकें कि ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से और हम डॉक्टर के पास पहुंचे।
इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि थायराइड कैंसर शुरुआत की स्टेज में कभी पकड़ में नहीं आता है और अधिकतर जो हम कैंसर्स पकड़ते हैं थायराइड ग्लैंड में वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। यानी कि पेशेंट आपके पास किसी और प्रॉब्लम को लेके आया है और आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप नोट करते हैं कि थायराइड ग्लैंड में कोई गिल्टी है और जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं करीब 20% ऑफ द पेशेंट जो गिल्टियां थायराइड ग्लैंड में दिखती हैं वो कैंसर होती हैं। बट ये हमें अपने श्रोताओं को बताना है कि थायराइड कैंसर जो है अधिकतर पता नहीं चलता है, तो ये रूटीन चेकअप पे ही पता चलता है। जब कभी ग्लैंड में कोई सूजन दिखती है, ऑब्वियस कोई नोड्यूल होता है या आसपास गर्दन में गिल्टियां दिखती हैं या आवाज में कोई बदलाव आता है या खाने पीने में कोई दिक्कत आती है, हो सकता है ये थायराइड कैंसर के लक्षण हो, पर तब तक बीमारी का स्टेज थोड़ा सा बढ़ चुका होता है।
आपने बिल्कुल सही कहा, कैंसर के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि अगर वो जल्दी से पता लग जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है और कई बार पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन थायराइड कैंसर बहुत जल्दी पता नहीं चलता है। ये इसके साथ एक ऐसी बात जुड़ी है कि हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है कि अगर इस तरीके का कोई भी हल्का फुल्का सिम्टम भी नजर आए तो उसको नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, आयोडीन की बात मैंने की थी, आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण भी क्या कुछ इस तरीके की समस्या आगे चल के हो सकती है?
आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि जब से गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया है देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडीन जो हमें नमक के रूप में मिल रहा है वो काफी एडिक्वेट है जिस तरह से हमारे इंडियन डाइट में कंजम्पशन होता है। बट आयोडीन की समस्या अभी भी कुछ प्रांतों में है, जैसे कुछ सब हिमालयन तराई रीजन है, वहां पे कुछ ट्राइबल एरिया भी हैं, बस्तर है या गोंदा है, उन एरियाज में अभी भी आयोडीन की दिक्कतें हैं। बट आयोडीन पर से थायराइड कैंसर की ओर ले जाता है ये सच नहीं है, बट डेफिनेटली आयोडीन की प्रॉब्लम से गोइटर होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड में कमियां आती हैं जिसके कारण ग्लैंड सूज जाता है, और कभी कभी जो लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर्स होते हैं वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। प्लस दूसरी बात, महिलाओं में फिजियोलॉजिकल डिमांड भी होता है आयोडीन का समय समय पर, जैसे प्रेगनेंसी में अगर आप देखेंगे बॉडी की जो डिमांड है वो उस टाइम बढ़ जाता है, तो आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसके डाइट की और काउंसिल करना बहुत जरूरी है। या फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, जब बच्चा प्यूबर्टी की ओर जाता है तब दैट इज वाई देयर इज समथिंग कॉल्ड फिजियोलॉजिकल गोइटर। तो इन सब फेजेस में महिलाओं के ये जो फेजेस आते हैं उनमें रिक्वायरमेंट जरूर पड़ता है।
प्रेगनेंसी में तो ये बात आपने बताई, क्या लैक्टेटिंग मदर्स में जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन माओं में भी इस तरीके की फिजियोलॉजिकल नीड्स बढ़ती हैं?
बिल्कुल, तो प्रेगनेंसी में जो रिक्वायरमेंट होता है और लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट थोड़ा और बढ़ जाता है, सो दिस हैज टू बी मेट थ्रू डायट्री प्रोटोकॉल्स।
डॉक्टर तपस्विनी, सबसे पहले तो आपने जैसे कि हमारे श्रोताओं को बताया महिलाओं में ही इस कैंसर के होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, पुरुषों में बहुत कम होते हैं, इसलिए भी ये इस तरीके का कैंसर है जो महिलाओं में होता है और उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं में क्या एज रिलेटेड भी कोई बात है कि इस उम्र की महिला में ज्यादा चांसेस हैं?
उम्र का जो संबंध है वो हम जनरली प्रोग्नोसिस के रूप में लेते हैं। कॉमन जो एज ग्रुप है अराउंड 30-50 ईयर्स, इस एज ग्रुप में ज्यादा देखते हैं। अगर उम्र बहुत कम है यानी कि 20 साल से कम है या उम्र 55 ईयर्स से ज्यादा है तो ये हमारे स्टेजिंग में भी फर्क दिखाते हैं, एंड ऑल्सो द प्रोग्नोसिस इज वेरिएबल इज डिफरेंट। तो जितना हमारा एज ग्रुप 30-50 या 25-55 तक सीमित रहता है ये एज ग्रुप का जो प्रोग्नोसिस है थायराइड कैंसर का अच्छा रहता है। उम्र बहुत कम या बहुत ज्यादा उसमें जो फ्यूचर होता है कैंसर का विद रिगार्ड्स टू थायराइड इज डिफरेंट, यानी कि दे आर जनरली मोर एग्रेसिव।
कैंसर एग्रेसिव का मतलब है कि अगर 25 साल से पहले हुआ है या 55 साल से ज्यादा उम्र में हुआ है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है कैंसर सेल्स का, जो मेलेग्नेंसी के सेल्स होते हैं, फास्ट होता है,
उनका प्रकोप थोड़ा अलग होता है, उनका जो वेरिएंट भी हम देखते हैं, क्योंकि थायराइड कैंसर में भी बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। 90% ऑफ द टाइम इट इज अ डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर जो कि पैपिलरी वेराइटी होता है, बट जैसे उम्र बढ़ती है ये जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर वो एनाप्लास्टिक कैंसर की ओर जाता है और सेल्स जो होती हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। कहा जाता है कि एनाप्लास्टिक कैंसर में आप जितना भी आप ट्रीटमेंट स्ट्रांग करें, एग्रेसिव कर लें, पेशेंट का सर्वाइवल 6 महीने से 1 साल तक ही होता है। सब कुछ करने के बाद भी यू रियलाइज यू डोंट हैव द पेशेंट आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर। सो वो एग्रेशन जो है कैंसर का वो एज के साथ भी बदल जाता है।
डॉक्टर साहब, एक चीज है जेनेटिक कंडीशंस, अनुवांशिक कारण। क्या थायराइड कैंसर में भी अनुवांशिक कारण हो सकते हैं? इस तरीके के चांसेस होते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, महिलाओं में आपके परिवार में अगर कैंसर थायराइड का रहा है तो हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है?
थायराइड में एक वेरिएंट होता है जिसको हम मेडुलरी थायराइड कैंसर कहते हैं और ये एक जीन के साथ लिंक्ड होता है जिसको रेट प्रोटोओंकोजीन कहते हैं। जब हमारे पास एक यंग पेशेंट होता है इस कैंसर के साथ, हमेशा एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल दिया जाता है जिससे कि आप बच्चा पैदा होते ही आप उस जीन का एनालिसिस करते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या इस बच्चे को ये कैंसर होगा कि नहीं होगा। और कुछ इस तरह के भी क्लिनिकल और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं कि कैंसर उस बच्चे में होने से पहले ही उसका इलाज हो जाना चाहिए, सो दैट फाइनली द आउटकम ऑफ द डिजीज इज मच बेटर। तो ये मेडुलरी थायराइड कैंसर में हम बहुत देखते हैं, बट यस इवन पैपिलरी कैन रन इन फैमिलीज।
इसी तरीके से कई बार रेडिएशन का जो एक्सपोजर है किसी बीमारी के इलाज में हो सकता है, या आप इस तरीके की इंडस्ट्री में काम करते हो, या जो रेडिएशन का एक्सपोजर है अदरवाइज हो सकता है, उसमें थायराइड कैंसर होने के कितने चांसेस हैं?
थायराइड के जो सेल्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं टू रेडिएशन। तो अधिकतर हम जो हेड एंड नेक कैंसर देखते हैं वो तंबाकू के साथ रिलेटेड होते हैं, पर थायराइड कैंसर उन हेड एंड नेक कैंसर से बहुत अलग है। पहली बात, उसका जो इटियोलॉजी यानी कि जो कारण है उस कैंसर के बहुत अलग है हेड एंड नेक कैंसर से, और एक प्राइम कारण है रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे आपने बहुत ही ठीक कहा। बट ये आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर से हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर जैसे न्यूक्लियर होलोकास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, या फिर कुछ कुछ इस तरह के हमारे मेडिकल कॉजेज भी हैं जो हम ट्रीटमेंट के दौरान यूज करते हैं या इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में भी थायराइड सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं। बट ये समय लेता है, यानी कि लेटेंट पीरियड जो हम बोलते हैं, करीब 10-15 साल लगते हैं इस परिवर्तन को आने में। बट हमें सतर्क होना चाहिए कि हर एक इन्वेस्टिगेशन जो हम ऑर्डर करते हैं पेशेंट को, सोच समझ के किया जाता है, अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए।
आपने बताया कि लेटेंट पीरियड बहुत रहता है, यानी बहुत समय तक ये सेल्स रहते हैं और मैलिग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको पता बहुत दिन बाद चलता है। तो ये जो रेडिएशन है ये कितने दिन बाद फुल ब्लोन कैंसर के तरीके से पता चलता है? शुरू में ही आपने कहा थायराइड कैंसर के बारे में कि बहुत लेट डायग्नोस होता है, तो इसमें रेडिएशन के थ्रू जो कैंसर है, मान लीजिए बहुत पहले कोई रेडियोथेरेपी दी गई या किसी दूसरे कैंसर की वजह से रेडिएशन थेरेपी दी गई, इसमें हम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि थायराइड का कैंसर होने के बाद भी हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस विल नॉट पिक इट अप, यानी कि थायराइड में कैंसर होने के बावजूद भी हार्मोन लेवल्स नॉर्मल रहती हैं। तो अधिकतर हमें पेशेंट आके यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो थायराइड हार्मोन बिल्कुल ठीक है, तो मेरा कैंसर नहीं हो सकता है। सो थायराइड कैंसर जनरली गिल्टी के रूप में आता है, और वो गिल्टी 50% लोगों में पता भी नहीं चलता है। और ये भी कहा जाता है कि कभी कभी ये थायराइड कैंसर्स शरीर में होते हुए भी पेशेंट को लास्ट मोमेंट तक नहीं पता चलता, और ऑटोप्सी में पता चलता है कि पेशेंट को कभी थायराइड कैंसर था। इसलिए हम अधिकतर इस चीज को अपने पेशेंट के साथ जब जिक्र करते हैं कि हम यही बोलते हैं, आपको कैंसर तो मिला है, बट शुक्रिया अदा करिए ऊपर वाले का कि ये कैंसर जो है आपको पूरी जिंदगी दे सकता है। इसलिए इस कैंसर को हमें लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, बट दिस इज वन ऑफ द गुड कैंसर्स विच कैन गिव द एंटायर लाइफ टू द पेशेंट। पर हमें इस पे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये भी एक कैंसर है जो कि हाईली ट्रीटेबल कैंसर है, और करीब 90-99% आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है विद अ गुड क्योर रेट।
डॉक्टर तपस्विनी, थायराइड कैंसर क्यों हो जाते हैं, किन में हो सकते हैं, कौन ससेप्टेबल हैं इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इन सब चीजों पर बात की है हमने। सिम्टम्स आपने बताए थे कि वो गिल्टी हो या लंप हो, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या कोई दूसरे फर्दर टूल्स भी आपके पास होते हैं, और फिर उनका इलाज कैसे किया जाए, उन पर हम आएंगे।
जी,
गाना कौन सा सुने?
मैं एक लता जी का गाना सुनाना चाहूंगी, और ये बहुत ही पुरानी मूवी का गाना है, और इसके शब्द कुछ इस तरह के हैं, जा रे उड़ जा रे पंछी।
कुछ दो लाइनें।
जा रे उड़ जा रे पंछी, बाहरों की देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, क्यों जड़ गई बगिया मेरे मन की, जा रे।
तपस्विनी, आपने कहा था कि गले में या जो थायराइड की ग्लैंड है उनके आसपास अगर कोई लंप है या कोई गिल्टी बन गई है, आपको थूक निकलने में कुछ परेशानी हो रही है, ये सब एक प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं। लेकिन हमेशा किसी डिसीज को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो थायराइड कैंसर को भी कंफर्म करने के लिए आपके पास कौन से टेस्ट हैं और कौन से टूल्स हैं जिनको आप काम में लाते हैं?
थायराइड का जो इन्वेस्टिगेशन प्राइमरीली अल्ट्रासाउंड से होता है, यानी कि गर्दन का अल्ट्रासाउंड करते हुए फिर हम उस नोड्यूल को देखते हैं, और नोड्यूल का एफएनईसी होता है यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो मेजरली हर एक एरिया का जो कन्फर्मेशन होता है डायग्नोसिस का, वो प्राइमरीली हिस्टोपैथोलॉजी बेस्ड होता है। सो थायराइड के नोड्यूल या तो ऑब्वियस हो तो आप उसको सीधा एफएनईसी कर सकते हैं, बट अगर वो नोड्यूल दिख ही नहीं रहा है तो वी जनरली डू एन अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनईसी, और उससे ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम, इनफैक्ट 100% ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट वेदर देर इज अ कैंसर और नॉट। सो देर इज अ वे टू, पैथोलॉजिस्ट का अपना एक स्केलिंग सिस्टम होता है जिससे वो बता पाते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है।
क्या वो स्टेज भी बता सकते हैं कि ये किस स्टेज पर पहुंच चुका है कैंसर?
स्टेज जो होता है, एक तो क्लिनिकल स्टेजिंग होती है और एक रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग होता है। तो अन्य कैंसर के कंपैरिजन में अगर हम थायराइड देखें तो जो उम्र हमने बताया था यानी कि 20 से 55 इयर्स का जो एज है, उसमें केवल दो ही स्टेज होते हैं, स्टेज वन और स्टेज टू। तो अन्य कैंसर में जैसे स्टेज वन टू स्टेज फोर होता है, थायराइड में केवल दो ही स्टेज होते हैं इस एज ग्रुप में। जब स्टेज एडवांस हो जाता है यानी कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है 55 में, तो स्टेजिंग का जो क्राइटेरिया है वो अलग होता है। तो स्टेज वन एंड स्टेज टू ही अधिकतर थायराइड कैंसर्स में होते हैं, और स्टेज टू होता है जब वो बीमारी फैल चुकी है। अदरवाइज कितना भी बड़ा थायराइड हो, गिल्टियां हो, वो फिर भी स्टेज वन में रहता है।
डॉक्टर साहब, स्टेज वन या स्टेज टू का कैंसर है, इसको हम ट्रीट फिर कैसे करते हैं? क्या कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है या मेडिकेशन के जरिए या रेडिएशन थेरेपी, किस तरीके से आप इसको ट्रीट करते हैं?
थायराइड के कैंसर्स हैं प्राइमरली सर्जिकली ट्रीट किए जाते हैं, ये रेडिएशन सेंसिटिव ट्यूमर्स नहीं होते हैं। तो सर्जरी रिमेन्स एज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। कितना सर्जरी करना है विल डिपेंड अपॉन क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। गर्दन में जो थायराइड में गिल्टी है वो कितना बड़ा है, पूरा थायराइड निकालना है कि आधा निकालना है, गर्दन में गिल्टियां हैं कि नहीं, तो आपको गर्दन में गिल्टियां साफ करना है कि नहीं करना है, तो ये सब चीजें हम गेज करते हैं ऑन क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे रेडिएशन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बट रोल यहाँ पे रेडियो आयोडीन थेरेपी का जरूर है। जैसे कहा, थायराइड कैंसर अन्य हेड एंड नेक कैंसर से बहुत अलग है। जहाँ हम दूसरे हेड एंड नेक में पोस्ट सर्जरी कभी कभी रेडिएशन लगाते हैं, बट इन थायराइड कैंसर्स मेजरली पेशेंट्स को रेडियो आयोडीन एब्लेशन या रेडियो आयोडीन थेरेपी की जरूरत होती है।
ये सर्जरी जो है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है?
सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्चुअली सर्जन के हाथ में होता है। कुछ तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है, कभी कभी थायराइड ग्लैंड बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है और आसपास के बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे खाने की नली है, सांस का रास्ता है। अगर हम साइड में जाएं तो गर्दन की मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिमाग को जाती हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो हमारे वोकल कॉर्ड को जो नर्व्स जाती हैं, वो चीज़ थायराइड कैंसर में जब आप ऑपरेट करते हैं इन कैंसर्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वोकल कॉर्ड की नर्व्स को बचाना। इनफैक्ट इट्स एन आर्ट। एंड दूसरा एक और चीज़ होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारा बॉडी का कैल्शियम को रेगुलेट करती हैं, तो हम जनरली कोशिश जरूर रहती है उन ग्लैंड्स को बचाने के लिए। अगर नहीं होता तो यू हैव टू गिव एक्सटर्नल सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम। बट ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम थायराइड का ग्लैंड निकालते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी इसकी सर्जरी करी जाती है, पेशेंट्स को इन चीजों के बारे में काउंसिल किया जाता है।
सर्जरी में थायराइड ग्लैंड जो है उसको निकाल दिया जाता है
जी।
तो जो थायराइड ग्लैंड का रोल है, बाद में फिर हमारा शरीर उस कमी को कैसे पूरा करती है?
ये चीज जो है, सर्जरी से पहले पेशेंट को काउंसिल किया जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। तो जब ये ग्लैंड इसी कारण से निकालना पड़ता है, कैंसर में जब हम पूरा निकाल देते हैं तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायराइड सप्लीमेंट पे डालना पड़ता है। छोटी सी गोली होती है जिसकी मात्रा आप बॉडी वेट से कैलकुलेट करते हैं और उसको रोज कहा जाता है कि सुबह खाली पेट खाने के लिए।
तो उस गोली से फिर थायराइड की जो जरूरत है शरीर को वो पूरी हो सकती है
जी।
अगर थायराइड कैंसर है और उसकी सर्जरी हुई तो कौन से कॉम्प्लिकेशन या कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया वो है कैल्शियम, जो ग्लैंड्स निकल जाते हैं सर्जरी के दौरान। तो पेशेंट्स को जो कैल्शियम की कमी, जिसको हम हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं, वो सब चीजें जो आप देखते हैं, कभी कभी इतना सिवियर कैल्शियम की कमी हो जाती है कि पेशेंट को टिटनी हो जाता है, यानी हाथ पांव पूरे अकड़ जाते हैं और सिवियर रूप में सांस का रास्ता भी रुक सकता है। दूसरा जो हम पेशेंट को बताते हैं कॉम्प्लिकेशन, वो है वोकल कॉर्ड की नर्व्स। तो वोकल कॉर्ड के दो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं और ये सर्जरी जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, वोकल कॉर्ड के नर्व्स और ग्लैंड्स जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। तो सर्जरी से पहले पेशेंट को ऑलरेडी कहा जाता है कि कोशिश हमारी पूरी रहती है इन चीजों पे सावधानी बरतने का। कभी कभी कैंसर उन नर्व्स को पूरा लपेट में रखा होता है, सो यू आर नॉट एबल टू सेव द नर्व। तो इसलिए पेशेंट को पूरी तरह से आपको काउंसिल करें सो दैट उसमें भी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि पोस्ट सर्जरी मेरे साथ क्या क्या हो सकता है।
डॉक्टर साहब, अगर ये अनफॉर्चुनेटली कैंसर होता है तो बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है। एक और बात है, किन चीजों से ये ज्यादा हो सकता है, हमारे डाइट से या और कौन से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पर ध्यान रख करके हम इस कैंसर के ऑकरेंस को अवॉइड कर सकते हैं?
डाइट पे पहले बहुत जोर था कि कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम गोइट्रोजेंस कहते थे, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है या सोयाबीन्स है। तो इनमें कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि थायराइड हार्मोन को बनाने में दिक्कत करती हैं। पर आजकल देखा गया है कि जब आप इन चीजों को उबालते हैं या जिस तरह से इंडियन प्रिपरेशन होता है वो चीजें हट जाती हैं, बट जब रॉ फॉर्म में आप यूज करते हैं उनको, जैसे कैबेज है तो आप रॉ फॉर्म में भी उसको सैलड या किसी रूप में लेते हैं, तो अवॉइड करें। जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है तो इन चीजों पे थोड़ा सा एटलीस्ट केयर लेना चाहिए। मैं कहूंगी कि हम वैसे भी इतनी मात्रा में कंज्यूम नहीं करते हैं कि वो इम्पैक्ट करेगा, बट जिसको ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है थोड़ा सा इन चीजों पे प्रिकॉशंस लें।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के थायराइड कैंसर पे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लेकिन चलते चलते क्योंकि समय की एक सीमा है, क्या कहना चाहेंगी हमारी महिलाओं से?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि ये एक कैंसर है जो कि बहुत ट्रीटेबल है, पर क्योंकि इसके सामने कैंसर का नाम जुड़ जाता है तो जिसको भी आप कहते हैं वो सबसे पहले उसका यही फीलिंग होता है कि ये तो अब मेरा डेथ सेंटेंस है। बट थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेजरली जो थायराइड की वैरायटी होती है वो पैपिलरी वैरायटी होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जो ट्रीटमेंट के बाद ऑलमोस्ट 90-99% क्योर रेट रहता है। इसीलिए अगर आपको पता चला है कि आपको थायराइड का कैंसर है तो बिना किसी हिचके स्पेशलिस्ट यानी कि ऑन्को सर्जन के पास आना चाहिए जिसको थायराइड की सर्जरीज करने की एक्सपर्टी हो, और जरूर समय पे आए। जितना जल्दी आएंगे उतना जो सर्जरी का जो हमारा दायरा होता है वो कम होगा, जितना आप बढ़ा के लेके आएंगे तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन वुड बी हायर।
दोस्तों, अगर इस तरीके के कैंसर की समस्या अनफॉर्चुनेटली हो भी जाती है तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि हम उसको तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज करने की कोशिश करें। आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संजीवनी बात सेहत की, महिलाओं में होने वाला थायराइड कैंसर। इस विषय पर जानी मानी हेड एंड नेक सीनियर कैंसर सर्जन डॉ तपस्विनी प्रधान से बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहयोग अनुराधा, संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप आगामी शनिवार दिनांक 1 जून को शाम 5:30 पर दोबारा सुन सकते हैं।
संजीवनी, बात सेहत की।